15 मार्च दिन भर दिन मंगलवार, मैं हूं रेहान फतल। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर किए गए स्टिंग ऑपरेशन को लेकर संसद में हंगामा।
कोई अगर ये कहे कि आप रुपए दो हम लॉबिंग करेंगे, हम मंत्री को, राज्य सरकार या केंद्र सरकार को प्रभावित करेंगे, संसद में सवाल उठाएंगे, वो सदस्य के लिए नहीं पूरे सदन के लिए अमर्यादा कर है और शर्मनाक है।
इनका भी कश्मीर श्रृंखला की दूसरी कड़ी में सुनाएंगे राधिका कॉल की चिट्ठी।
शायद गलती मेरी ही है, रांची, दिल्ली, अमेरिका और फ्रांस जैसे विभिन्न जगहों पर रह के मैं वापस एक भ्रष्ट, पिछड़े और कट्टरपंथी कश्मीर में जीने और खुश रहने की आशा कैसे रख सकती हूँ।
जिक्र होगा भारत न्यूजीलैंड T20 मैच का भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, अमल चौधरी से। तृणमूल कांग्रेस के कुछ सांसदों के खिलाफ कथित रिश्वतखोरी के मामले में सरकार ने आज लोकसभा में कार्रवाई किए जाने की बात करते हुए कहा कि सच सामने आना चाहिए। वहीं तृणमूल सदस्यों का कहना था कि पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले राजनीतिक साजिश के तहत आरोप लगाए गए हैं। लेफ्ट पार्टियां सिस्टिंग को सही ठहराते हुए ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग कर रही हैं, लेकिन टीएमसी ने इस सिस्टिंग को फर्जी बताया है। म्यांमार में दशकों बाद लोकतांत्रिक सरकार चुने जाने के बाद अब संसद ने टिन चौ को अपना अगला राष्ट्रपति चुना है। म्यांमार में 50 सालों से अधिक वक्त तक सैन्य शासन था और अब पहली बार गैर सैनिक पृष्ठभूमि के एक व्यक्ति देश का नेतृत्व करने जा रहे हैं। टिन चौ आंग सान सूची के बेहद करीबी माने जाते हैं, जिनकी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने नवंबर में हुए ऐतिहासिक चुनावों में शानदार जीत दर्ज की थी। फिलहाल सूची के राष्ट्रपति बनने पर संवैधानिक रोक लगी हुई है, लेकिन उन्होंने संकेत दे दिए हैं कि राष्ट्रपति उनके प्रभाव में ही काम करेंगे। नॉर्वे की अदालत दक्षिणपंथी विचारधारा वाले आंद्रे बेहरिक ब्रेविक के एक मामले की सुनवाई कर रही है, जिन्होंने 2011 में 77 लोगों की हत्या कर दी थी। ब्रेविक ने सरकार के खिलाफ खराब बर्ताव की शिकायत की है, जिस पर अदालत में सुनवाई चल रही है। अदालत में आने के बाद ब्रेविक ने नाजी सलाम दिया। उनका दावा है कि उन्हें यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन करते हुए अलग थलग रखा गया, जिसके मुताबिक अमानवीय सजा की मनाही है। जेल अधिकारियों को भेजी चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि उनके सेल में कोई भी खिड़की नहीं है और उन्हें ठंडी कॉफी परोसे जाने के साथ उनकी ब्रेड पर मक्खन भी कम लगाया जाता है। ब्रेविक के वकील ऑस्टिन स्टॉरविक ने कहा, ऐसे देश जहां मौत की सजा नहीं दी जाती, वहां जब भी लोगों के खिलाफ फैसला सुनाया जाता है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वो सजा इतनी अधिक अमानवीय ना हो कि जिससे दोषी को मौत की सजा आसान लगने लगे। ये जानकारी इस केस के मामले में अहम है, क्योंकि यहां किसी को भी मौत की सजा नहीं दी जाती, लेकिन ब्रेविक के साथ जेल में ऐसा ही व्यवहार किया जा रहा है जिससे उनका जीना मुश्किल होता जा रहा है। ब्रेविक के वकील ऑस्टिन स्टॉरविक के शब्द। वहीं नॉर्वे सरकार का कहना है कि ब्रेविक के गंभीर अपराधों के बावजूद उनके साथ मानवीय तरीके से बर्ताव किया जा रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को देश की सेना को आदेश दिए कि वो सीरिया से अपने सैनिकों को मंगलवार से हटाना शुरू कर दें। राष्ट्रपति पुतिन ने इस घोषणा से विश्व समुदाय को हैरान कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि सीरिया में रूसी हस्तक्षेप का जो मकसद था उसे काफी हद तक हासिल किया जा चुका है। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की और अमरीकी राष्ट्रपति कार्यालय के मुताबिक दोनों नेताओं ने संघर्ष विराम को आगे बढ़ाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा की। भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता की केरल के अलापुझा जिले के चेप्पड़ इलाके में मंगलवार तड़के पीट पीट कर हत्या कर दी गई। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों और मंत्रियों पर एक न्यूज पोर्टल द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन को लेकर लोकसभा में आज जमकर हंगामा हुआ। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी सहित विपक्षी दल जैसे कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने इस स्टिंग ऑपरेशन को लेकर तृणमूल कांग्रेस को सदन में घेरने की कोशिश की। वाम दलों का आरोप है कि यह स्टिंग ऑपरेशन उस समय हुआ जब तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने दक्षिण भारत की एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए कथित रूप से पैसे लिए। तृणमूल पार्टी स्टिंग ऑपरेशन को फर्जी बता रही है। सलमान रावी की रिपोर्ट।
एक निजी न्यूज पोर्टल ने अपनी वेबसाइट पर कुछ वीडियो डालकर दावा किया है कि जिन सांसदों और मंत्रियों को इसमें दक्षिण भारत की एक कंपनी के मालिकों से पैसे लेता हुआ दिखाया गया है, वो पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। वीडियो को लेकर बुधवार को लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। हंगामे में एक तरफ तृणमूल कांग्रेस के सदस्य थे तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष कांग्रेस और वाम दलों के सांसद। हंगामे के बीच सीपीएम के मोहम्मद सलीम ने लोकसभा में कहा कि अगर वीडियो में सच्चाई है तो फिर ये पूरे सदन के लिए एक शर्मनाक घटना है।
14वीं लोकसभा में 11 सांसदों को निकाला गया था। कोई अगर ये कहे कि आप रुपए दो हम लॉबिंग करेंगे, हम मंत्री को, राज्य सरकार या केंद्र सरकार को प्रभावित करेंगे, संसद में सवाल उठाएंगे, वो सदस्य के लिए नहीं पूरे सदन के लिए अमर्यादा कर है और शर्मनाक है।
मोहम्मद सलीम ने लोकसभा अध्यक्ष से मांग की कि वो मामले को लेकर संसद की एक जांच समिति बनाए।
समिति बनाओ और सीबीआई एफआईआर करे और उसके बाद सच्चाई लोगों को मालूम हो। तृणमूल कांग्रेस एटीएमसी एनी टाइम मनी कंपनी हो गया है 24/7।
कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये बात राजनीति पर भी लागू होती है जहां साझा प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ कभी कभी अलग अलग विचारधारा के लोग एक ही सुर में बोलने लगते हैं। तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ सीपीएम, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता एक ही सुर में नजर आए। भारतीय जनता पार्टी के एसएस आहलूवालिया का कहना था,
इस लज्जाजनक और दुर्भाग्यजनक घटना के लिए इस विषय को इथिक्स कमेटी के सामने भेजा जाए और सारे narda.news.com का सारा रिकॉर्डिंग मंगाया जाए और इसकी जांच पड़ताल होगा करके उचित कार्रवाई।
वहीं बंगाल में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी का कहना था कि जो कुछ न्यूज पोर्टल में दिखाया गया है उससे संसद की गरिमा को ठेस पहुंची है।
जहां नोटों की बंडल लेकर हमारे ही सांसद चोरी छुपी बात करते हैं, किसी को काम दिलाने के लिए, किसी को फेवर दिलाने के लिए, तो हमें ये देखना चाहिए कि इससे हम कैसे बचे, क्योंकि ये संसद की गरिमा से ताल्लुकात है।
तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जब सौगत रॉय सफाई देने के लिए खड़े हुए तो सीपीएम के मोहम्मद सलीम और उनके बीच तीखी नोकझोंक हुई।
व्हाट रूल यू अलाउड देम टू स्पीक?
बाद में सौगत राय ने सदन में बोलते हुए कहा, सौगत राय कह रहे थे कि न्यूज पोर्टल द्वारा दिखाया गया वीडियो पूरी तरह से फर्जी है। उनका कहना था कि विधानसभा के चुनाव के ठीक पहले इस तरह का वीडियो जारी करना राजनीतिक साजिश है। दूसरी तरफ न्यूज पोर्टल के पत्रकार मैथ्यू सैमुअल ने इन आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया कि उनका पोर्टल अभी लॉन्च हुआ है और उसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है।
कुछ भी नहीं है, मैंने स्टोरी किया था, अभी कंपनी फॉर्मेशन हुआ था, मैं स्टोरी रिलीज कर दिया था, उसमें ऐसे इलेक्शन में कुछ जोड़ा कुछ भी नहीं है।
राज्य में होने वाले विधानसभा के चुनाव से ठीक पहले इस तरह के स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो की सच्चाई अभी तक प्रमाणित नहीं हो पाई है, मगर ऐसे माहौल में इस तरह के स्टिंग ने पश्चिम बंगाल में एक नया राजनीतिक भूचाल खड़ा कर दिया है। सलमान रावी, बीबीसी दिल्ली।
संसद में हंगामा। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 9 फरवरी को कथित तौर पर देश विरोधी नारे लगाने के मामले की जांच करने के लिए बनाई गई एक उच्च स्तरीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कुछ छात्रों को दोषी पाया है और कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं छात्रों का कहना है कि वो जवाब कैसे दें जब तक उन्हें जुर्म न पता हो। साथ ही अब तक गिरफ्तार छात्रों उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य के समर्थन में राजधानी में आज रैली निकाली गई। पूरी जानकारी के साथ दिव्या आर्य।
9 फरवरी को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में क्या हुआ और उसके लिए कौन जिम्मेदार है, इस बारे में अब और जानकारी मिलने की उम्मीद है। उस घटना की जांच कर रही उच्च स्तरीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर वाइस चांसलर को दे दी है। रिपोर्ट के आधार पर कुछ छात्रों को दोषी पाया गया है और उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। जेएनयू की प्रवक्ता पूनम कुडेसिया ने बताया,
ये पाया गया है कि कुछ छात्रों ने विश्वविद्यालय के कायदों का उल्लंघन किया है। विश्वविद्यालय को इनके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है और उसके तहत चीफ प्रॉक्टर की ओर से छात्रों को शो कॉज नोटिस जारी किया जा रहा है।
नोटिस पाने वाले छात्रों में से एक रामा नागा जेएनयू छात्र संघ के महासचिव हैं और कहते हैं कि नोटिस में उनके जुर्म के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। बीबीसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि उच्च स्तरीय समिति ने छात्रों को अपना पक्ष रखने के 3 मौके दिए थे, पर उनके समेत कई छात्रों ने समिति में किसी दलित और महिला सदस्य के न होने पर आपत्ति जताते हुए अपने बयान देने से मना कर दिया था।
ये तो मैंने एक तरह से मैंने हो गया कि आपको क्लियर कट ओपिनियन दे दिए हैं कि एक्शन लेना ही लेना है, हमारी बात अभी तक सुनी नहीं गई है, हमारा जो कंसर्न था टीचर और स्टूडेंट का उसको एड्रेस नहीं किया गया है, फिर भी कमिटी ने आपने रिपोर्ट सबमिट कर दिया और डिसीजन भी लेने जा रहे हैं।
जेएनयू शिक्षक संघ भी समिति के खिलाफ अपनी आवाज उठा चुका है और उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस प्रस्ताव पारित कर चुका है। संघ के महासचिव सुरजीत मजूमदार ने बीबीसी से बातचीत में कहा,
हमने तो कह दिया है कि इंक्वायरी प्रोसेस प्रॉपर नहीं हुआ है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात हो रही है, आप उसको भी रिपोर्ट नहीं दे रहे हो, आप किसी को रिपोर्ट नहीं दे रहे हो, ये क्लैंडेस्टाइन फैशन में कैसे कोई कार्रवाई हो सकती है।
शो कॉज नोटिस में छात्र को जिस धारा के तहत दोषी पाया गया है उसके मुताबिक उन्होंने कोई ऐसा काम किया है जिसे वाइस चांसलर या किसी अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने विश्वविद्यालय में बर्ताव और अनुशासन के कायदों का उल्लंघन पाया है। नोटिस के मुताबिक छात्रों को बुधवार शाम तक जवाब देना है, अन्यथा ये मान लिया जाएगा कि उन्हें अपने बचाव में कोई सफाई नहीं देनी और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। संसद हमले के दोषी अफसल गुरु से जुड़े 9 फरवरी के कार्यक्रम के बाद छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को गिरफ्तार किया गया था, जो अब जमानत पर बाहर हैं। दो अन्य छात्र उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य अब भी हिरासत में हैं। इन दोनों की रिहाई की मांग के साथ आज जेएनयू के छात्र एक बार फिर सड़कों पर उतरे और उनके साथ जुड़ने वालों में बुकर प्राइज विजेता अरुंधति राय भी शामिल थी। अरुंधति राय ने उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य के अलावा देशद्रोह के ही मामले में हिरासत में दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गिलानी और माओवादियों के साथ संबंध रखने के आरोप में हिरासत में प्रोफेसर जीएन साईं बाबा की रिहाई की भी मांग की। वहीं दिल्ली की एक अदालत ने जेएनयू के छात्रों उमर और अनिर्बान की न्यायिक हिरासत की मियाद आज 2 हफ्ते से और बढ़ा दी। दिव्या आर्य, बीबीसी दिल्ली।
दिन भर शॉर्टवेव 25, 31 और 41 मीटर बैंड यानी 7,565, 7,600, 9,510, 11,595 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
और अब एक नजर एक अंतर्राष्ट्रीय विषय पर। खबरें आ रही हैं कि रूस का पहला लड़ाकू जहाज सीरिया से वापस रूस लौट चुका है। सोमवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया था कि सीरिया से रूसी सेना मंगलवार से हटना शुरू कर देगी। संयुक्त राष्ट्र ने रूस के इस कदम का स्वागत किया है। पश्चिमी देशों के अधिकारियों का कहना है कि रूस के इस फैसले के बाद अब वे सीरियाई सरकार पर बातचीत में शामिल होने का दबाव डाल सकते हैं। हालांकि रूस के उपरक्षा मंत्री ने संवाददाताओं से कहा है कि वो चरमपंथी ठिकानों पर हवाई हमले जारी रखेगा। बीबीसी संवाददाताओं की रिपोर्ट के साथ अमर शर्मा।
रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बयान उस समय आया है जब जिनेवा में सीरिया में 5 वर्षों से जारी गृह युद्ध को खत्म करने के लिए शांति वार्ता का ताजा दौर चल रहा है। शांति वार्ता की मध्यस्थता कर रहे संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत स्टेफान दे मिस्तुरा ने भी रूस के फैसले का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता अहमद फाउजी ने मिस्तुरा की ओर से एक बयान पढ़ा।
These are the words of Stefan de Mistura commenting on the announcement by the Russian Federation of the withdrawal of their forces from Syria.
सीरिया से सेना हटाने के रूस के ऐलान पर स्टेफान दे मिस्तुरा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और ये उनके शब्द हैं। सीरियाई शांति वार्ता के पहले ही दिन रूस का ये ऐलान एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और इससे वार्ता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
अहमद फाउजी के शब्द। जिनेवा में सीरियाई शांति वार्ता का दूसरा दिन शुरू हो गया है। राष्ट्रपति पुतिन ने रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के साथ बैठक के बाद देश की सेना को आदेश दिया कि वो सीरिया से अपने सैनिकों को मंगलवार से हटाना शुरू कर दे। पुतिन ने कहा कि सीरिया में रूसी हस्तक्षेप का जो मकसद था उसे काफी हद तक हासिल किया जा चुका है।
रूसी सेना, सीरियाई सेना और सीरिया में सरकार का समर्थन कर रही सेना ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से लड़ने में सफलता प्राप्त की है। इसके साथ ही हर मोर्चे पर ऐसा माहौल बनाया है जिससे शांति प्रक्रिया शुरू हो सके।
राष्ट्रपति पुतिन के शब्द। पुतिन ने कहा कि रूस सीरिया में शांति बहाल करने के प्रयास तेज करेगा।
मैंने विदेश मामलों के मंत्रालय से रूस की भागीदारी को बढ़ाने को कहा है ताकि सीरिया समस्या के समाधान के लिए शांति प्रक्रिया बहाल हो सके।
भले ही बयान में ये कहा गया कि सेना को वापस बुलाने का आदेश जमीनी हकीकत के अनुकूल है, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन ने ये भी साफ कर दिया है कि सीरिया में रूस का एक हवाई अड्डा और एक नौसैनिक संचालन केंद्र रहेगा।
При этом наши пункты базирования морской в Тартусе и авиационные на аэродроме Хмеймим.
Тартус का नौसैनिक अड्डा हमयामीम का हवाई अड्डा दोनों पहले की तरह चालू रहेंगे. इनकी जमीन समुद्र और हवा से सुरक्षा की जाएगी.
इसका मतलब ये है कि ये रूस की सेना का सीरिया से पूरी तरह से वापस जाना नहीं है. अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की है और अमरीकी राष्ट्रपति कार्यालय के मुताबिक दोनों नेताओं ने संघर्ष विराम को आगे बढ़ाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा की है. रूस सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद का महत्वपूर्ण सहयोगी है. सीरिया की सरकार ने मॉस्को के साथ किसी भी मतभेद से इनकार किया है. राष्ट्रपति असद के कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि असद और पुतिन की सहमति से ये फैसला हुआ है. पिछले सितंबर में रूस ने सीरिया में अपने हवाई हमलों की शुरुआत की थी. इससे सीरियाई सरकार को बल मिला था और वो कुछ क्षेत्रों को विद्रोहियों से वापस हासिल करने में कामयाब हुई. सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद को सत्ता से हटाने के लिए पिछले 5 सालों से संघर्ष जारी है और बशर अल असद अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं. संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार सीरिया में जारी गृह युद्ध में अब तक करीब 2.5 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं. संघर्ष की वजह से 1.3 करोड़ लोग अपने घर से बेघर हो गए हैं. जेनेवा में फिर से शुरू हुई इस शांति वार्ता से पहले फरवरी में की गई ऐसी ही कोशिश नाकाम हो गई थी. संयुक्त राष्ट्र वहां शांति बहाल करने के लिए सभी पक्षों को बातचीत के लिए तैयार कर रहा है.
रूस ने सीरिया से अपने लड़ाकू विमान हटाने की शुरुआत की.
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम.
बीबीसी हिंदी.
ये बीबीसी है. आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ. आज कांशीराम का 82वां जन्मदिन है. इस मौके का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल और मायावती ने पंजाब के दलित मतदाताओं को लुभाने में किया और वहां कई रैलियां की. मैंने चंडीगढ़ फोन कर स्थानीय पत्रकार संजय शर्मा से संपर्क किया और पूछा कि आज वहां दिन भर केजरीवाल और मायावती की क्या गतिविधियां रहीं.
मायावती ने एक पब्लिक रैली नवा शहर में संबोधित की और उसमें काफी ठीक ठाक संख्या में लोग थे. मायावती ने एक बात बहुत बड़ी साफ की जो भविष्य की राजनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी कि वो कांग्रेस से पंजाब में या उत्तर प्रदेश में कोई अलायंस नहीं करेंगी. ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि इनके बीच कोई तरह की बातचीत चल रही है. और दूसरा राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था, उन्होंने सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल पर हमला किया और कहा कि ये उन लोगों में से हैं जो राजनीति में आने से पहले आरक्षण का विरोध करते थे. मायावती की सिर्फ एक ही आज रैली थी. अरविंद केजरीवाल ने दूसरा रास्ता चुना, जैसे लोग कई तरह से बोलते हैं जैसे कि दलित पिलग्रिमेज पे गए हुए थे. वो पहली बार तो वो जो बुंगा पृथ्वीपुर गाँव है जहाँ कांशीराम जी का जन्म हुआ था, जो उनकी ननिहाल थी, वहां गए और उनके परिवार के लोगों से मिले, उनके साथ टाइम बिताया. वहीं काफी सारे लोग इकट्ठे हो गए थे. फिर एक तरह से वहां पे एक रैली एड्रेस की और उसमें ने बोला कि कांशीराम जी को भारत रत्न मिलना चाहिए. वो सच्चे अम्बेडकर के उत्तराधिकारी हो गए. इसके बाद क्योंकि पंजाब की राजनीति में रविदासिया और वाल्मीकि एक प्रतिस्पर्धी दलित समाज है, तो अरविंद केजरीवाल ने उसको बैलेंस करने के लिए एक और डेरा है बाबा प्रगटनाथ वाल्मीकि योग आश्रम रहीमपुर में, उसमें गए और वहां बाबा प्रगटनाथ से बातचीत की. और एक डेरा बल्ला है जो रविदासी समाज का है, दोनों जगह गए. ये दोनों जो सेक्ट्स हैं काफी वोटों पे असर डालने की स्थिति में होते हैं.
ये बताइए, पंजाब में चुनाव अगले साल होने वाले हैं और केजरीवाल खासा जोर लगा रहे हैं वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए और ये भी अपेरेंटली दलित वोटों को अपनी तरफ करने की कोशिश थी. अभी तक आपको क्या लग रहा है, वो एक बड़े विकल्प के रूप में उभर कर आ रहे हैं या अभी इसमें वक्त लगेगा?
ये ऐसा लगता है कि वो बड़े विकल्प के रूप में उभर चुके हैं और खासतौर से अगर हम पिछला लोकसभा चुनाव भी देखें तो जो दलितों की 34 विधानसभा सीट है पंजाब में, उनमें से 14 सीट सबसे ज्यादा आप उसमें आगे रही थी लोकसभा के इलेक्शन के टाइम में. 12 में कांग्रेस और 8 में अकाली आगे रहे थे. तो सबसे बड़ी बात यह है कि नए वोट बैंक में वो एंटर कर रहे हैं जो शेड्यूल कास्ट है और शेड्यूल कास्ट हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पंजाब में है, लगभग 33%. तो केजरीवाल की शुरुआत एक वहां से हो रही है जो एक बहुत बड़ा समाज है जिसका प्रतिनिधित्व कभी सत्ता में रहा नहीं 1992 और 96 के अलावा, जब बीएसपी मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई थी पंजाब में.
और मायावती, जहां तक बहुजन समाज पार्टी की बात है, उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, कहीं ना कहीं उपस्थिति दर्ज कराते रहे हैं वो. तो इन सब विकल्पों में और मायावती की जो नई कोशिश है, आप उनको कहां पाते हैं इस समय?
मायावती दोबारा से कोशिश कर रही हैं कि जो धरोहर थी बीएसपी की, जिसमें वो बीएसपी पीक पे पहुंच गई थी 92 और 96 में, कि उसको किसी तरह से क्लेम करे। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में मायावती की परफॉर्मेंस बहुत खराब रही, 34 विधानसभा सीट में से एक ही सीट पे वो कोई बढ़त नहीं ले पाए और सिर्फ उनका वोट का प्रतिशत घट के सिर्फ 2% रह गया। इस बार मायावती के लिए बहुत बड़ी लड़ाई है अगर कि पंजाब के कांशीराम की धरती से वो अपना वोट बैंक बचा के अस्तित्व रख पाती है नहीं रख पाती है। और दूसरा ये कि अभी कहा जाने लग गया है पंजाब में कि मायावती सिर्फ उत्तर प्रदेश की दलितों की रिप्रेजेंटेटिव रह गई है।
ये थे चंडीगढ़ से स्थानीय पत्रकार संजय शर्मा। अब वक्त है कश्मीरी पंडितों पर हमारी विशेष श्रृंखला का। कल आपने राहुल पंडिता से कश्मीर में उनके बचपन की यादें सुनी, लेकिन पंडितों के पलायन के बाद कश्मीर से बाहर पैदा हुई पीढ़ी के लिए घर के क्या मायने हैं? राधिका कौल कश्मीरी पंडितों की उस पीढ़ी की हैं जो कश्मीर से बाहर पैदा हुई। उनकी शिक्षा रांची और दिल्ली में हुई और बाद में येल विश्वविद्यालय से उन्होंने बैचलर्स की डिग्री ली। इन दिनों वो दिल्ली में टीच फॉर इंडिया अभियान से जुड़ी हुई हैं। इनका भी कश्मीर श्रृंखला के तहत आज सुनिए राधिका कौल की चिट्ठी।
तुम्हारी नाक कश्मीरी नहीं है, मेरी दीदी अक्सर मुझे टोका करती थी। तुम्हें गांठ गोभी खाना भी नहीं पसंद और तुमने तो कभी कश्मीर देखा ही नहीं है। फिर बताओ तुम कैसे कश्मीरी हुई? नहीं, मैं कश्मीरी हूँ, मैं कहा करती थी। मेरे रांची के बचपन में कश्मीर एक आकृतिहीन जगह थी। मुझे पता था कि मेरे परिवार के जड़ उस भूमि में थे और मुझे ये भी पता था कि मेरे घर की सारी अनूठी बातें, हमारी भाषा, हमारा खान पान, मेरी माँ के फेरन, एक सुंदर लेकिन धूल से लदी हुई कांगड़ी और माता खीर भवानी की तस्वीर, ये सब कश्मीर से आए थे। लेकिन कश्मीर कैसा दिखता था, लोग वहाँ कैसे रहते थे, मुझे इसका कोई आभास नहीं था। रांची मेरा घर था, मुझे ये लगता था कि हम जिंदगी भर यहीं रहने वाले थे। फिर एक दिन अपने माता पिता से बात करते समय मुझे इस बात का एहसास हुआ कि रांची तो दूर की बात, शायद मेरा घर किसी एक जगह पे था ही नहीं। 20 साल रांची में रहने के बावजूद मेरे माता पिता रांची को अपना स्थायी घर मानते ही नहीं थे। कुछ सालों में हम दिल्ली जाने वाले थे क्योंकि मेरी पढ़ाई के लिए वही बेहतर था। रांची हमारी ज़मीन थोड़ी है, वो मुझे अक्सर याद दिलाते थे। स्वाभाविक तौर पर मैं सोचने लगी कि फिर हम कश्मीर क्यों नहीं जाते। उन्हीं दिनों मैंने अखबार पढ़ना शुरू किया था और रोज़ कश्मीर में आतंकवाद की खबरें पढ़ने को मिलती थी। क्या यही बात थी? गर्मी की छुट्टियों में मेरी सारी सहेलियाँ अपने गाँव जाती थीं। उन वर्षों में अवचेतन रूप से मुझे सिर्फ एक ज़मीन की तलाश थी, एक ऐसी ज़मीन जिसे मैं अपना बोल सकूं। इस तलाश में मैंने धीरे धीरे अपने मन के कश्मीर को बनाया। अपनी नानी दादियों की कहानियों से, अपने छिने हुए घर, श्रीनगर की सड़कें, शरद के चिनार, शंकराचार्य की घंटियां, जहलम के पुल, डल के शिकारे, गुलमर्ग की बर्फ देखने की कोशिश की। जब माँ पापा ने मेरी ख्वाहिश पूरी की और मुझे 3 दिनों के लिए कश्मीर ले गए, जहाज से हिमालय के ऊंचे हिमाच्छादित पर्वतों को देख मैंने खुद को रोते हुए बोला कि अगर यहाँ मर भी जाऊँ, अगर आतंकवादियों ने मार भी दिया तो कोई बात नहीं। तब से मैं कश्मीर 4 बार गई हूँ। जैसे बड़ी होती गई वैसे समझ में आया कि हम अपनी भूमि को छोड़ के गए ही क्यों। एक बार गुलमर्ग में एक सहायक ने मेरी दीदी और मुझसे मुस्कुराते हुए यही सवाल पूछा, आप क्यों भाग गए? हमें भगाया गया था, मैंने कहा। उसने फिर हंसते हुए बोला, किसने? मेरी दीदी ने गुस्से में कहा, भूतों ने। एक दूसरे आदमी ने बोला, जगमोहन ने बोल दिया तो तुम लोग भाग गए। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल सही, एक बंदे ने कहा और 5 लाख लोग अपनी सरजमीन, अपने घर, अपने रिश्ते सब छोड़ के चल गए। अक्सर मन करता है कि मैं कश्मीर को अपना घर बनाऊं, वहीं रहने की कोशिश करूं। जब भी गई हूं एक बिन बुलाए मेहमान जैसा महसूस करती हूं। शायद गलती मेरी ही है। रांची, दिल्ली, अमेरिका और फ्रांस जैसे विभिन्न जगहों पर रह के मैं वापस एक भ्रष्ट पिछड़े और कट्टरपंथी कश्मीर में जीने और खुश रहने की आशा कैसे रख सकती हूँ। फिर लगता है कि मेरा हवा महल ही बेहतर है, वहाँ से कोई मुझे बाहर नहीं निकाल सकता। अभी मेरी भाषा जिंदा है, उसे बोल के जी लेती हूँ कश्मीर को। आगे मेरा घर कहाँ होगा मुझे नहीं पता।
राधिका कौल की इस चिट्ठी को आप दोबारा सुन सकते हैं कल सुबह नमस्कार भारत में। और अब T20 विश्व कप। भारत आज नागपुर में न्यूजीलैंड से अपना पहला मैच खेल रहा है। अब तक दोनों देशों के बीच हुए चार मुकाबलों में से चारों न्यूजीलैंड के नाम रहे हैं। आइए सीधे चलते हैं नागपुर नितिन श्रीवास्तव के पास। लगता है नितिन से संपर्क टूट गया है और इस समय स्टूडियो में मेरे सामने बैठे हुए हैं आदेश कुमार गुप्त। पूरी नजर है उनकी मैच पर। आदेश, बताएं, बहुत जबरदस्त सेंसेशनल शुरुआत जिसे कहा जाए।
जी हाँ, बिल्कुल। आर अश्विन ने जिस तरह से पहला ही ओवर डाला और न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, मार्टिन गप्टिल केवल 6 रन बनाकर आर अश्विन की गेंद पर LBW हो गए। पहली गेंद पर छक्का मारा था, लेकिन दूसरी ही गेंद पर जिस तरह से कामयाबी मिली, भारतीय खेमे में जोश का संचार हुआ। और अभी अगर इस मुकाबले की बात की जाए तो 6 ओवर की समाप्ति के बाद थोड़ी देर पहले न्यूजीलैंड का स्कोर 32 रन था 2 विकेट के नुकसान पर। कप्तान केन विलियमसन 6 रन बनाकर खेल रहे हैं। काफ़ी झिझक के साथ उन्होंने शुरुआत की, रन बनाने के मौके नहीं मिल पा रहे हैं। दूसरी तरफ कोरी एंडरसन कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ग्राउंड शॉट खेलें, हालांकि वो लॉफ्टेड शॉट के लिए माने जाते हैं। और अगर दूसरे विकेट की बात की जाए तो मुनरो आउट हुए थे जब आशीष नेहरा की गेंद को उन्होंने हिट करने की कोशिश की, लेकिन हार्दिक पांड्या ने उनका आसान कैच पकड़ा, उनके बल्ले से केवल 7 रन निकले। आर अश्विन की गेंदबाजी की बात की जाए तो पहला ओवर उनका काफ़ी महंगा साबित हुआ जब उन्होंने 13 रन खर्च किए, लेकिन दूसरे छोर से आशीष नेहरा ने काफ़ी दबाव बनाया। आशीष नेहरा ने अपने शुरुआती 2 ओवर में केवल 6 रन देकर 1 कामयाबी हासिल की। तो अब ये कहा जा सकता है,
तो अभी जो रुख है उससे कोई भविष्यवाणी तो नहीं की जा सकती, लेकिन क्या कहते हैं कितना स्कोर सेफ रहेगा न्यूजीलैंड के लिए?
देखिए, जिस तरह का विकेट है, गेंद काफ़ी फंस कर आ रहा है, तो 140 रन तो कम से कम बनाने ही पड़ेंगे। और न्यूजीलैंड के जो बाकी बचे हुए बल्लेबाज हैं उनमें रॉस टेलर, ग्रांट गिलियर और सेंटनर ऐसे बल्लेबाज हैं जो रनों की रफ्तार को तेज़ कर सकते हैं, लेकिन अब देखना ये पड़ेगा कि जो बाकी बचे हुए गेंदबाज हैं जैसे रविंद्र जडेजा है, बुमराह ने भी गेंदबाजी की शुरुआत कर दी है, तो ये किस तरह का दबाव बनाने में कामयाब रहते हैं। उधर आज भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने शानदार शुरुआत की जब ग्रुप बी के पहले मैच में उसने बांग्लादेशी महिला क्रिकेट टीम को 72 रन से मात दी। आज भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 163 रन बनाए। कप्तान मिताली राज ने 42 और उनकी जोड़ीदार स्मृति मंधाना ने 38 रनों का योगदान दिया। हरमनप्रीत कौर ने भी 40 रन बनाए और वेदा कृष्णामूर्ति 36 रन बनाकर नाबाद रही। और इसके बाद जब बांग्लादेशी टीम मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो वो निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर केवल 91 रन ही बना सकी। उनकी ओर से शर्बिन अख्तर ने 21 रनों का योगदान दिया और बाकी बल्लेबाज भी कोई खास योगदान नहीं दे सके। भारतीय गेंदबाजी की बात की जाए तो अनुजा पाटिल ने 4 ओवर में 16 रन देकर 2 विकेट हासिल किए और पूनम यादव ने 17 रन देकर 2 विकेट हासिल किए।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदेश कुमार गुप्त। और सभा की समाप्ति से पहले एक नज़र मुख्य समाचारों पर।
BBC समाचार। तृणमूल कांग्रेस के कुछ सांसदों के खिलाफ कथित रिश्वतखोरी के मामले में सरकार ने आज लोकसभा में कार्रवाई की जाने की बात करते हुए कहा कि सच सबके सामने आना चाहिए। म्यांमार में दशकों बाद लोकतांत्रिक सरकार चुने जाने के बाद अब संसद ने टिनचौ को अपना अगला राष्ट्रपति चुना है। टिनचौ आंग सान सूची के बेहद करीबी माने जाते हैं। नॉर्वे की अदालत दक्षिणपंथी विचारधारा वाले आंद्रे बेहरिक ब्रेविक के एक मामले की सुनवाई कर रही है जिन्होंने 2011 में 77 लोगों की हत्या कर दी थी। उनका दावा है कि उन्हें यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन करते हुए अलग थलग रखा गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को देश की सेना को आदेश दिए कि वो सीरिया से अपने सैनिकों को मंगलवार से हटाना शुरू कर दे। उन्होंने ये भी कहा कि सीरिया में रूसी हस्तक्षेप का जो मकसद था उसे काफ़ी हद तक हासिल किया जा चुका है। भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता की केरल के अल्लापुजा जिले के चेप्पड़ इलाके में मंगलवार तड़के पीट पीट कर हत्या कर दी गई। BBC समाचार।
दिन भर को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन सभा समाप्त करने से पहले बता दें कि न्यूजीलैंड का 1 विकेट और 3 विकेट पर 35 रन। स्टूडियो संभाल रहे थे अजीत सारथी। रेहान फदल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।